प्रादेशिक समाचार के साथ में यरंता सिंह। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से भेंट के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्धविकसित और विकासशील देशों की आवाज बुलंद करना जारी रखेगा। सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू को रविवार को नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के मंत्रिपरिषद में बरकरार रखा गया है, जबकि असम से भाजपा की राज्यसभा सांसद पवित्रा मार्गरीटा को भी नई सरकार में शामिल किया गया है। सोनोवाल और रिजिजू ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि मार्गरीटा ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। नई गठबंधन सरकार में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक भी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कल शामिल हुए। नरेंद्र मोदी के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने पर अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल केटी पटनायक ने उन्हें बधाई दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने कहा कि आगामी 1 जुलाई से प्रदेश पुलिस और कानून विभाग नई आपराधिक कानून को लागू करने के लिए पूरे समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार सिविल सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव ने नई आपराधिक कानून को लागू करने के वास्ते राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2023 को ही अनुमति दे दी थी, मौजूदा ब्रिटिश काल का आपराधिक कानून इंडियन पैनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड सुपर 30 के 30 छात्रों में से 29 छात्रों ने ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा एडवांस को उत्तीर्ण की है और वे देश के प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश लेने के योग्य हैं। सुपर 30 कार्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों को हॉस्टल सुविधा के साथ साथ निशुल्क कोचिंग दिया जाता है। मेधावी छात्रों जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके माता पिता की वार्षिक आय 4 लाख से कम है, उन छात्रों के लिए यह कार्यक्रम है। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 उत्तराखंड में और एक बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान अगले महीने की 10 तारीख को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। मणिपुर के जिरीबाम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अग्रिम सुरक्षा दल पर कुछ अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया। यह हमला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर कोटलैंड सीनम गांव के पास हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री इस दल के साथ नहीं थे। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। एनआईए की एक टीम आज रियासी जिले में पहुंची और रविवार शाम को एक यात्री बस पर हुए आतंकी हमले की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर रही है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान भी चलाया। आतंकवादियों ने रविवार को कटरा में शिवखोरी मंदिर में माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही 53 सीटों वाली बस पर गोलाबारी की, जिससे वह सड़क से उतर गई और रियासी जिले में एक गहरी खाई में गिर गई। बस उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी। घात लगाकर किए गए हमले में 41 लोग घायल हो गए, उनमें से 10 को गोली लगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को लक्ष्य से 6 रन पहले ही रोक दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए 19 ओवर में 119 रन बनाए। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन ही बना सका। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।